Quedé muy intrusa.
खुशखबरी नॉर्थ अमेरिकन चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर्स विद फुल वारंटी
अ कॉल ट्रक एंड लू 1776 मेयरसाइड ड्राइव 905-565-1100
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वल्लो खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने की निम्रता सहित बेनती की जाती है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 647-290-3773
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वल्लो खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा जो सवेरे 9 बजे CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 बजे नगर कीर्तन सिटी हाल रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने की निम्रता सहित बेनती की जाती है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
अपने प्यारों को पैसे भेजें लैम्फाई के जरिए, पैसे पहुंचे मिनटों में वो भी आसान और महफूज तरीके से गुड एक्सचेंज रेट के साथ। $150 भेजने पर $0 फीस। इसके अलावा अगर आप $100 से ज्यादा भेजें तो साइन अप करते वक्त रेफरल कोड E10 इस्तेमाल करें और अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर 10% कैश बैक हासिल करें, यानी $500 भेजने पर $50 कैश बैक की सूरत में आपके अकाउंट में वापस। लैम्फाई की 10% कैश बैक ऑफर के लिए आज ही लैम्फाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें। विजिट lamfy.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस।
वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास।
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बाइंग और सेलिंग,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो।
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज,
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट।
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी,
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड। प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस। आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं, घर की इवैल्यूएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर 6478986245 8986245।
वफाकी इंतखाब बरोज पीर 28 अप्रैल को है। यह यकीनी बनाएं कि आप वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हैं। अगर ऐसा है तो आपको डाक के जरिए वोटर का मालूमाती कार्ड मिलना चाहिए। यह आपको बताता है कि आप कहां और कब वोट डाल सकते हैं। अगर आपको यह 11 अप्रैल तक नहीं मिलता है या इस पर मौजूद मालूमात गलत हैं, तो elections.ca पर जाएं। ये हमारा वोट है। वोट डालने के बारे में जरूरी बाज़ाब्ते मालूमात के लिए elections.ca पर जाएं या 1-800-463-6868 पर कॉल करें।
मजे मजे के सिक्के, मजे के कबाब,
खाना हो तो आ जाओ Shaheen Tikka and Kabab.
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kabab.
Mujhe maze de chicken tikke kabab biryani dal tadka.
Lahori style nashta, mazedar kadhai. Mouth-watering kebabs and sizzling barbecue items.
Shaheen Tikka and Kabab.
In Flemington Mall.
अकाल ट्रक एंड लू
ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस रिपेयर ऑयल चेंज वॉश ते मेंटेनेंस
एक और खुशखबरी,
नॉर्थ अमेरिकन चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूप 1776 मेयरसाइड ड्राइव 905-565-1100
10 दिन हो गए तेनु स्नेहा लाई नु पर तू इग्नोर ही कर रहा फोन फोन इग्नोर हो जूगा गोलियां इग्नोर नहीं होनी आपदा ते आपदे परिवार दा ध्यान रखी फिर ना कही भी दस्या नहीं
जस्टिन ट्रूडो ते मार्क कार्नी दिया सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसीज़ दे कारण एक्सटॉर्शन बढ़ चुकी है लिबरल्स ने एक्सटॉर्शन ते पेनल्टीज भी कटा दतिया ने इस दौरान पियर पॉलियव एक्सटॉर्शन दे खिलाफ बिल लेके आए सन पर ट्रूडो कार्नी लिबरल्स ने इस दे खिलाफ वोट की थी हुन सिर्फ कॉमन सेंस कंजर्वेटिव ही कैनेडा दा माहौल ठीक कर सकदे ने
ब्रॉट टू यू बाय पियर पॉलियव एंड कैनेडास कंजर्वेटिव्स
जी हाँ मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो प्राइवेट हो फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर मयंक भटनागर जी 6476427022 6 7 2 0 2 3 6 7 4 2 2 3
लाइटहाउस नंबर 10394
वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल बाइंग और सेलिंग
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं घर की इवैल्यूएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर 6478986245 8986245
खूबसूरत दांत बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन फिलिंग्स क्राउन्स ब्रिजेस क्लीनिंग एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स फ्री कंसल्टेशन दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 299-7466
वेलकम बैक तमाम स्वामी जो हमें सुन रहे हैं 770 एम डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और गर्मा गर्म खबरें लेकर अब तक की ताजा खबरें इसके बाद वो कैसी रहेंगी आई डोंट नो उस पर पानी कितना डला हुआ है कितना डलेगा लेकिन अब तक ताजा है अभी उतारी है बिल्कुल और हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं शाजिया मलिक साहिबा तो आइए उनको खुशामदीद कर लें चलिए उनको वेलकम करते हैं शैंपेन कलर का आज कारपेट बिछा देते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है बाहर तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु
WS कैसे हो फिर तुम रोज ये कंजर्वेटिव क्यों बन के आ जाते हो भाई अच्छा यानी कि दिल का अलग ऊपर से कंजर्वेटिव लेकिन अंदर से दिल काला है ये क्या चक्कर है भाई
नहीं ये जो काले रंग की जो खूबसूरती जो आप भी पहनी है ना इसकी खूबसूरती होती है कि वो रोशनी को ना बाहर से आने वाली को अपने अंदर रिजॉल्व कर लेता है तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है कुछ भी आ रही है आजकल तो बहुत आ रही है वो अपने अंदर मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ उसको दूसरी तरफ फेंकता नहीं हूँ
अच्छा 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 तो मैंने भी अजीब सोचा
कि आप भी जो है वो आज
सारा एब्जॉर्ब कर लिया हमने
और मेरे ख्याल से
हार्ट अटैक ना आ जाए इतना एब्जॉर्ब कर लिया अभी अगर हार्ट अटैक आ गया तो फिर क्या होगा
कुछ नहीं इंश्योरेंस तो है
पीछे तो बच के हम तो पैसे मिल जाएंगे देखो हम तो चले जाएंगे आगे के सफर पे
हमारा मकसद आगे दूसरा है
हाँ बड़ा है मकसद बड़ा है
पीछे रहने वालों को भी बंदा बोले यार अपना तो मकसद बड़ा कर लिया हमें तो सारे तुम मॉर्गेज में फंसा के चले गए
कम से कम उनकी मॉर्गेज भी पे हो जाए।
हाँ, पे हो जाए। अच्छा अच्छा, वाह वाह वा, क्या बात है। तुम
हर एक का सोचता हूँ,
दूर का सोचते
और हर एक का सोचता हूँ।
हाँ, हर एक
बहरहाल कभी कभी अनजान है ना, वो कहते हैं समझते हैं कि यार फरिश्ता हो गया, नहीं पाया जाने, इंसान है, गलती का पुतला है। और आगे जो है वो चीजें टैरिफ 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 और
टैरिफ में तो पीका एक्ट भी लगा हुआ है ना।
पीका एक्ट भी लगा दिया इन्होंने, बताओ। अब ये पीका एक्ट भी लग गया है, टैरिफ भी लग गया है, रिसेशन भी आ गया है,
आ गया
है।
इसीलिए चटनियां भी नहीं आई।
भाई आपने मुझसे पूछा कि भाई इस साल चटनियां जाएंगी।
हाँ।
मैं उसी रजा होती
है। हाँ। और टैरिस लग गए,
टैरिफ लग
गए, और अजनबियां भी एक एक आ रही
है, खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले तीन चार आ जाती थी।
हाँ, नहीं, तीन तो कभी नहीं आई,
दो तो आती थी,
दो आती थी, अब वो
अच्छे वक्तों में, उससे भी अच्छे वक्तों में आती।
उस वक्त में हम नहीं थे,
और आप नहीं थी। हाँ,
हम नहीं थे,
वो आप चार साल पहले की बात है।
हाँ, हाँ, तो वो उसमें दो हमने देखी, दो के बाद एक होगी। हम मुझे लगता है एक की भी आधी हो जाएगी
बस। अब अगर ऐसे ही चलता है टैरिफ, हाँ, तो वो खत्म ही हो जाएगा।
और रिसेशन,
रिसेशन
ठीक है,
वो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या मामला होते हैं।
हाँ जी, तो
चले जी,
हम आपको जी खबरें जल्दी से सुनाते हैं। और कल हमारा बड़ा स्पेशल एक इंटरव्यू रहेगा डॉक्टर सलमान के साथ। आपको पता ही है जुनून के जो है वो गिटारिस्ट हैं, और उन बेचारे के ऊपर उसके ऊपर जो है बेचारे के ऊपर पीका है लग गया, और बहुत ज्यादा, हालांकि अमेरिका में बैठा हुआ है, नथिंग टू डू विद। हाँ,
इसलिए मैंने आपसे भी कहा था, देखिए आप कनाडा बैठी हैं, तैयार रहिए।
हाँ, तैयार रहिए। नहीं, हम ऐसा काम ही नहीं करते, हम पे पीका एक्ट लगे तो जनाब उस पे लग गया। तो कल हम, अब जो है आज तो एक्सक्यूज मी वो बिजी थे, तो कल अब वो जो है हमारे साथ बात करेंगे, और जो है फिर हम स्पेशल इंटरव्यू आपको उनका दिखाएंगे। तो अभी कहीं हम आपको दूसरी खबरें सुनाते हैं जनाब। और दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह जी के साथ आप बात करो, आपको ढेर सारे पैसे बचाए, लेकिन आपने नाम आमिर का लेना है। दोस्त वो सिर्फ आमिर के हैं ना, जीशान के हैं ना मेरे हैं। 1775 अगर आपने बचाना है और यूरोप के टूर पे जाना है, तो फिर आप आमिर का नाम लें। आपको होम और ऑटो इंश्योरेंस पे बहुत ढेर सारे पैसे बचाएंगे। अच्छा खाना आपको खाना है तो आप जाइए उनके पास, जो फैसल चट्ठा साहब हैं, उनका विलेज टेस्ट है। दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसिसागा में और एक ओकविल में। तो आप जाएं और आप उनको मिलें और उनसे बोलें कि भाई हमें अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, भूखे लोग हैं, तो बहुत अच्छे आपको खाने खिलाएंगे, ठीक है जी। और अच्छे कपड़े, इटालियन, अगर आपका इटालियंस के साथ प्यार है, तो आप इटालियन कपड़े लेना चाहते हैं, तो आप जाइए स्पेयर एंड मके पे, ब्रिटानिया रोड के ऊपर है, और बहुत जबरदस्त उनके पास अभी कलेक्शन नहीं आई है। अगर आपने दांत अच्छे कराने, जाहिर है कि अब आपने खाना खा लिया, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो दांत पीले रहेंगे तो कैसा लगेगा, यू नो। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर नाजिया रहमान के साथ। रिजवे पे आ गई है नया अपना डेंटिस्ट्री ऑफिस लेकर, तो उस पर आप जाएं, डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे पे, और बहुत अच्छे आपको सुविधाएं मिलेंगे वहां पे। इसके साथ साथ लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं मदनान अलवी साहब, वो कहते हैं जी गरीब शाजिया मलिक की तरह होके रहने का जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आओ, बहुत सारे मैं आपको इन्वेस्टमेंट के पैकेजेस दूंगा, तो वो आप ले लो और फिर आप इन्वेस्ट कर लो उस पे, तो आप उनके साथ जरूर मिलें। एंड जनाब वन एंड ओनली हमारे जो है सुल्तान भाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे होते हैं, आप उनके पास जाओ, बंडल डील्स ले लो, ठीक है जी। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम आपको बता दें जो कनाडा के अंदर हो रहा है, और आज भी जो नैनोज का रिसर्च आया है उसके अंदर लग रहा है कि अब जैसे ये जो नैरो होता जा रहा है इनके बीच में, जो लिबरल्स को एडवांटेज बहुत मिल गया था ना, एकदम से 20 पॉइंट आगे चले गए थे, वो नैरो हो गया, वो सिर्फ 5 पॉइंट्स आगे रह गए हैं। और ये अभी आज 7th है ना, तो कल 6th को, संडे को ही ये इन्होंने किया है। सो एज अ रिजल्ट लिबरल्स आर स्टैंडिंग एट 43%, कंजर्वेटिव 38%, एनडीपी 8%, ब्लॉक क्यूबेक वॉज 7%, ग्रीन्स 3%, पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा 2%, और कंजर्वेटिव जो है वो होप करते हैं कि वो ऑन्टेरियो के अंदर जीतें, तो क्योंकि ऑन्टेरियो में उनका जो है पॉपुलैरिटी 42% है, लिबरल्स का ड्रॉप कर गया है, इट हैज कम टू 49%, और हर जगह पे वैसे लिबरल्स लीड कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर प्रेरीज, प्रेरीज के अंदर कंजर्वेटिव्स ने अभी तक अपना लीड बनाया हुआ है, 57% के ऊपर है, लिबरल्स जो है उनके पास यहां पे सिर्फ 28% सपोर्ट है। लिबरल्स जो है वो लीड कर रहे हैं क्यूबेक में भी, और लेकिन फिर भी 4 पॉइंट्स नीचे आ गए हैं, 44% पे अब है, और कंजर्वेटिव पार्टी 16% पे, ब्लॉक क्यूबेक हैज गॉन अप अ फ्यू पॉइंट्स 29% पे। मार्क कार्नी साहब के लिए अगर कहा जाए कि प्रेफर्ड जो पीएम है, तो वो उसके लिए उनके पास 50% प्रेफरेंस है, पॉलीएब के लिए 32%, 49% औरतें जो हैं वो कहती हैं जी लिबरल्स को, लिबरल्स के साथ औरतों का बड़ा प्यार है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो वो कहती हैं जी हम लिबरल्स को वोट करेंगे, 30% कहती हैं जी हम कंजर्वेटिव्स को करेंगे, 37% अलबत्ता जो मेन हैं वो कहते हैं लिबरल्स को, और 46% जो हैं वो कहते हैं मेन, वो कहते हैं हम कंजर्वेटिव्स को करेंगे। तो अब जो फाइनल 3 वीक्स जो अब शुरू हो गए हैं उसके अंदर ये ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं इनके ऊपर अब लोगों का कुछ वो जो है ध्यान नहीं है, उनका फोकस है अब जॉब्स पे, ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, हाउसिंग पे, टैक्सेस के ऊपर ज्यादा जो है जोर है। 3 वीक्स जैसे कि मैंने आपको बताया जी कि अब रह गए हैं और 28th को होने वाले हैं इलेक्शंस। तो कार्नी साहब ने और पीएर पॉलीएव साहब ने और जगमीत सिंह साहब ने बहुत सारे अब प्रोमिसेस किए हैं। तो सबसे पहले तो कार्नी साहब का हम आपको बताते हैं, उन्होंने कहा जी कि वो विड्रॉ करेंगे रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम फंड बाय 25% फॉर फर्स्ट ईयर और इंक्रीज करेंगे गारंटीड इनकम सप्लीमेंट बाय 5% फॉर 1 ईयर, जिसमें के $652 जो हैं लो इनकम सीनियर्स के बचेंगे और ये टैक्स फ्री होंगे ये पैसे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा जी कि हम सीनियर्स को जो है उनको बहुत उनका ख्याल रखेंगे। आज एक कम्युनिटी हॉल कर रहे थे विक्टोरिया के अंदर जिसमें कि उन्होंने कहा आमिर ये तो मेरे लिए खबर है ना सीनियर्स की खबर तो मेरे 652 बचेंगे भाई ठीक है। हाँ हाँ इतने ढेर आधा यूरोप तो मैं नहीं, तुम सीनियर्स में नहीं हो ना पागल तुम्हारे कोई पैसे नहीं बच रहे, तुम्हारे जीरो बच रहे हैं, तुम्हारे जो उसने बचाए हैं राजा बादशाह ने वही है, मेरे अलबत्ता ढेर सारे पैसे बच रहे हैं जी 652, क्योंकि आपको पता ही आमिर ने आपको बताया 1940 की मेरी पैदाइश है तो मैं सीनियर्स में आती हूँ ठीक है जी। आज कम्युनिटी हॉल में विक्टोरिया में थे और उन्होंने कहा जी कि हमको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने का जरूरत है जैसे कि ग्रीन एनर्जी वगैरह में। इसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा जोक भी आज किया, उन्होंने कहा जी कि डक फोर्ड साहब को तो हम भेजते हैं फॉक्स के ऊपर इंटरव्यू करने के लिए और हमारा केस फाइट करने के लिए, वैसे तो डैनियल स्मिथ को भी भेजते हैं, फिर उन्होंने कहा ओ नो नो अभी हमको डैनियल स्मिथ को नहीं भेजना है, इट वॉज अ वेरी बैड आइडिया। तो लोग उस पर थोड़ा हंसे भी। और फिर इन्होंने जो पीए पॉलीएफ साहब हैं वो पहले बीसी में थे फिर वो एडमिंटन में चले गए थे और उन्होंने कहा जी कि वन एंड डन रूल जो है वो मैं लेकर आऊंगा फॉर मेजर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा मैं एस्टैब्लिश करूंगा रैपिड रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफिस फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा सख्ती से, यानी कि जाहिर है कि रेड टेप काटने की बात है। जगमीत सिंह साहब जो थे वो टोरंटो में थे, उन्होंने कहा जी कि 3 मिलियन अफोर्डेबल होम्स बनाएंगे बाय 2030 और इसको हम तेज करेंगे न्यू होम्स को। इसके अलावा उन्होंने कहा जी 16 बिलियन हाउसिंग जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम ज्यादा तेजी लाएंगे और ये जो लिबरल पार्टी का हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड था इससे हम तेजी से और ज्यादा तेजी से चलेंगे और ये बहुत ही प्रोटेक्ट करेगा अफोर्डेबल रेंटल्स को और लोअर हाउसिंग कॉस्ट जो है फैमिलीज के लिए। वो 100,000 इसमें वो कहते हैं जी स्किल्ड वर्कर्स जो है हम ट्रेन करेंगे इस प्लान को आगे चलाने के लिए। और फिर उसके बाद उनकी मुलाकातें जो आपको पता है ये हडसन बे बंद हो रहा है तो द बे के जो वर्कर्स थे उनके साथ वो मिल रहे थे। ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि वो बिजनेसेस जितने भी हैं ऑन्टेरियो में उसको 6 मंथ्स का डेफरल दे रहे हैं ऑन सम टैक्सेस टू नेविगेट थ्रू इकोनॉमिक स्टॉर्म, ये जो कि आ गया है यूएस के टैरिफ वॉर के वजह से। उन्होंने कहा जी कि सिलेक्ट प्रोविंशली एडमिनिस्टर्ड टैक्सेस इंक्लूडिंग बियर वाइन एंड स्पिरिट्स टैक्स गैस टैक्स जो है इसको डेफर किया जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक। और उन्होंने कहा जी कि बिजनेसेस को 9 बिलियन वर्थ ऑफ कैश फ्लो जो है हम देंगे ताकि वो अपने वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सके और इकोनॉमिक टर्मोइल यहां पे ना आए। फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑन्टेरियो के पीटर बेथलिन फेल्वी, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल ऑन्टेरियो के वर्कर्स और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि उनकी फैमिलीज को भी प्रोटेक्शन आए। और उन्होंने कहा जी कि हम जो गवर्नमेंट है $2 बिलियन का रिबेट देगी एलिजिबल बिजनेसेस को थ्रू वर्क प्लेस सेफ्टी इंश्योरेंस बोर्ड टू कीप वर्कर्स ऑन जॉब। तो ये आज एक और बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है ऑन्टेरियो गवर्नमेंट का। अच्छा जी, अब ट्रंप साहब जो है अभी और भी थ्रेट कर रहे हैं चाइना को कि तुम्हारे ऊपर और भी हम टैक्सेस लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना ने भी कहा है कि ट्रंप ने जो रिटेलिएट हम पे टैरिफ्स लगाए हैं उसके ऊपर हम रिटेलिएशन शो करेंगे। आज ये ट्रूथ सोशल पे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो चाइना ने हमारे ऊपर 34% का रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है इसको फौरन ये वापस लें कल तक, यानी कि कल का मतलब अप्रैल 8 तक ये सारा कुछ वापस ले ले। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो फिर हम चाइना के ऊपर ऑन टॉप ऑफ जो हमने ऑलरेडी टैरिफ लगाया है 50% हम 9th को यानी कि परसों जो है हम लगा देंगे इनके ऊपर। तो अब वो कहते हैं जी इनके ऊपर डिपेंड करते हैं ये हमारे साथ कैसा चलना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यूएस टैरिफ्स जो है वो हम इनके इम्पोर्ट्स जो है फ्रॉम चाइना उसके ऊपर हम 104% लगाएंगे। और इन्होंने कहा जी कि हम इसके अलावा जो है नए टैक्सेस इनके ऊपर लगा सकते हैं। ये जो 20% टैरिफ इन्होंने लगाया था वो इसलिए था कि जो फेंटेनॉल का ट्रैफिकिंग बहुत सारा हो रहा है और सेपरेटली 34% का इन्होंने अनाउंस किया था लास्ट वीक इनके ऊपर चाइना के ऊपर। तो इन्होंने कहा जी कि ये आपको ये हटाना पड़ेगा। अब चाइना को तो लग रहा है इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर वो अमेरिका को अपनी चीजें नहीं बेचेंगे तो वो दूसरे कुछ लोगों को और मार्केट्स में अपना चीजें बहुत बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन उसकी वजह से अमेरिका जो है अमेरिकन जो मार्केट है उसमें चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी और चाइनीज चीजें आपको पता है चीप होते हैं। तो वो अब कह रहे हैं जी हम अपने दूसरे पार्टनर्स को ज्यादा बेचेंगे। आज ये जो इनके सारे अनाउंसमेंट्स और ये सब चल रहा था उसकी वजह से डाउ जोन्स जो था 750 पॉइंट्स नीचे था, S&P 500 पॉइंट्स नीचे था यानी कि 1.5% और नैस्डेक जो था दैट वाज ऑफ 1.2%। व्हाइट हाउस ने इसके अलावा जो है वो एक बहुत सारी खबर इस सब के बीच में जब ये चल रहा था ब्लड बाथ तो उन्होंने ऐसे खबरें आ रहे थे कि जैसे ट्रंप साहब सोच रहे हैं पॉज करने का ये सारे टैरिफ्स, तो व्हाइट हाउस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब फेक न्यूज है। आज जनाब एलॉन मस्क साहब जो है उनके सुर काफी बदले हुए थे क्योंकि जाहिर है कि उनका टेस्ला जो है और दूसरे बिजनेसेस बहुत बुरे तरीके से हिट हो रहे हैं। तो आज इन्होंने एलॉन मस्क साहब ने कहा कि अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड होना चाहिए यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में और उन्होंने कहा जी कि अलबत्ता टैरिफ फ्री इकोनॉमिक जोन इसको बनाने का जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल जो ट्रेड बैरियर्स है उनको मैं रिमूव करना चाहता हूं। एक वीडियो अपीयरेंस में वो ये बात कर रहे थे और इसको ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको होस्ट कर रहे थे इटली के फार राइट लीग पार्टी इन फ्लोरेंस क्योंकि इटली के ऊपर भी बहुत सारे जो है वो लगे हैं टैरिफ्स। तो इन्होंने कहा कि वैसे तो आइडियल बात तो यही रहेगा कि जीरो टैरिफ सिचुएशन हो जाए और फ्री ट्रेड जोन आ जाए यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में और जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो आ जाए। लेकिन जो है ये लोग जो है वो विश करते हैं कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो है कोई भी ट्रेड नहीं ऐसे ट्रेड वॉर्स नहीं रहने चाहिए है और वो कहते हैं जी कि मैं चाहता हूं कि इसी तरह से चीजें चले और वो कहते हैं जी मैंने इवन ट्रंप साहब को भी इसके बारे में बोला है। आज जो व्हाइट हाउस है उसने बताया है कि ओवर 50 कंट्रीज जो है उन्होंने एक इनिशिएशन लिया है कि वो ट्रेड टॉक्स जो है ये टैरिफ का टॉक्स करना चाहते हैं ट्रंप साहब के साथ और वो चाहते हैं कि जो है ये जो मार्केट के अंदर बहुत सारा इकोनॉमिक फियर आ गया है और ये जो डाउन टर्न आ रहा है उसको थोड़ा चेंज किया जाए। इसके साथ साथ टैरिफ जो है उसने जो यूएस स्टॉक के अंदर लास्ट वीक ही अभी 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो था वो खराब किया था और ग्लोबल मार्केट्स उसकी वजह से बहुत बुरे तरीके से हिट हुए थे। आज भी जो मार्केट्स ओपन हुए हैं वो बहुत ही रॉकी डे था और कुछ जो इंटरव्यूज दे रहे हैं अब ट्रंप साहब का या जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स है वो वैसे तो इनको टैरिफ्स को बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हम करना चाहते हैं यूएस का पोजीशन एज ग्लोबल ट्रेड और जो ग्लोबल ट्रेड में यानी कि यूएस को पोजीशन कर रहे हैं प्रॉपरली उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा फायदा उठा रहे थे। ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है स्कॉट बेसेंट उसने कहा कि 50 नेशंस जो है हाँ बिल्कुल उसने हमारे साथ बात किया लेकिन वो कौन से 50 नेशंस हैं उसका कुछ डिटेल इन्होंने नहीं दिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है आपको पता ही है कि नेटो के साथ बहुत ज्यादा जो है अब ये शुरू हो गया है इनका टेंशन उसको ईज करने के लिए बेल्जियम के अंदर ये थे और वहां पे बेल्जियम जो है उसके ऊपर भी बहुत स्टीप टैरिफ्स लगाए गए हैं तो उसके लिए तो ये एक नेटो का समिट अटेंड कर रहे थे फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स। इसके बाद इनकी मुलाकात जो है बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर बर्ड डी वीवर से भी हुई है ब्रसल्स में और इन्होंने कहा जी कि ये जो 20% टैरिफ्स है ईयू गुड्स के ऊपर तो ये जो है ہم انہوں نے رپورٹرز کو بتایا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم سارا وقت لوگوں سے چیزیں خریدتے رہے، ہم کو بھی کچھ بنانا پڑے گا اور ہم کو بھی اپنے لیے جو ہے سوچنا پڑے گا. ہمارے لیے ظاہر ہے کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم کو امریکنز کا سوچ کے ان کے لیے جابز کریٹ کرنا ہے اور ہم کو اپنا جو ٹریڈ کا جو سٹیٹس ہے اس کو بڑھانا ہے. اس وقت یو ایس کو بہت برے طریقے سے لوگ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے یہ سارا چیز جو ہے اس کو ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل ایبسولیوٹلی رائٹ ہے اور اس میں کچھ مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، آپ کو سمجھ ہی آنا چاہیے. اور تو لوگوں نے جب ان سے رپورٹر سے کہا کہ اکانومیز تو کریش ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ تو ریئیکشن ہے ایسا، اور اکانومیز جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا یہ ایسے تھوڑا ری سیٹ لانا پڑے گا، اور اکانومیز یہ کریش نہیں ہو رہی ہے، یہ مارکیٹ کے اندر کریکشن آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ مارکیٹ کریکشن جب آ جائے گا تو مارکیٹس خود سے ہی ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور پھر یہ پرابلمز جو ہے نہیں رہیں گے، پھر آپ کے سٹاک ویلیوز کریش نہیں ہوں گے اور پرابلمز نہیں آئے گا. اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ نیٹو کو کہا کہ بھئی آپ کو کچھ گھبرانے کا ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ 1949 سے ساتھ میں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو اب ٹرمپ صاحب کچھ اور بول رہے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ صاحب کچھ اور بول رہے ہیں، تو ابھی پتا چلے گا. ویکینڈ کے اوپر جی موراکو کے اندر تھاؤزنڈ آف لوگ جو کہ آج بھی جاری رہا وہ پروٹیسٹ جو ہے موراکو میں اسٹریٹس کے اوپر تھے کیونکہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے کہ جو اسرائیل نے بہت سارا اسالٹ جو ہے غزہ کے اوپر چلایا ہوا ہے. لارجسٹ یہ جو ہے ڈیمونسٹریشن تھا موراکو کے اندر ان منتھس، اور جو یہاں تک یہ پہنچ گیا جو ان کا کیپٹل ہے رباط اس تک. اس کے علاوہ جو دوسرے جو ان کے علاقے تھے جیسے کہ اور بھی ریجن کے اندر، یعنی کہ ٹونیزیا ہے، یمن ہے، کیسابلانکا ہے، وہاں پہ بھی بہت بڑے جو ہے وہ اینٹی اسرائیل رہے، یہاں پہ پروٹیسٹ رہے اور امریکہ کے خلاف بھی رہے کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ اوور 50,000 پیلسٹینینز کا ڈیتھ ہو گیا. حالانکہ یہ تو آفیشیل نمبر ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ تو کہتے ہیں جی لاکھ سے زیادہ پیلسٹینین انہوں نے مار دیا. اس کے علاوہ 115,300 وونڈیڈ ہیں، ڈسپلیسڈ ہیں تھاؤزنڈز آف لوگ، تو اس کے خلاف یہ سارے جو ہے وہ نکال رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ یہ یو ایس کا جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے ان کے آئی وی لیگ اور دوسرے یونیورسٹیز میں یو ایس میں، تو اس کے خلاف بھی یہ مورچہ انہوں نے نکالا ہوا تھا. یو اے انڈیا جو ہے وہ اب کوشش کر رہا ہے کہ ایک انرجی ہب ڈیولپ کرے گا سری لنکا کے اندر کیونکہ چائنا کا انفلوئنس جو ہے بہت ہی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں پہ. اور یہ تینوں نیشنز جو ہیں انہوں نے یہ پیکٹ سائن کیا ہے جب مودی جی جو ہے وزٹ پہ تھے سری لنکا کے. یہ فرسٹ جو ہے ان کا وزٹ ہے بائی اینی انٹرنیشنل لیڈر سنس سری لنکا کے پریزیڈنٹ ارونا کمارا دسایانکے جو ہیں انہوں نے اپنا آفس جو ہے وہ سنبھالا تھا سپٹمبر کے اندر. انڈیا نے ان کی بہت ہی چونکہ حالت خراب تھی، 2022 سے خراب چلتی آ رہی ہے، تو انہوں نے انڈیا نے $4 billion ان کو ایز اے فائنینشیل اسسٹنس دیا تھا. لیکن چائنا کا جو اسٹیٹ انرجی فرم ہے سائنو پیک، اس نے بھی ان کے ساتھ 3.2 billion کا آئل ریفائنری جو ہے وہ سری لنکا میں ہم بینٹوٹا جو ہے وہاں پہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا. اور انرجی اب ہب جو ہے یہ ٹرین کوملی کے اندر یہ جو سری لنکا کے ایسٹ میں ہے وہاں پہ سیٹ اپ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہی ہے کہ یو اے جو ہے ان کا نیچرل پارٹنر ہے، ان کے ساتھ بہت سارا ٹریڈ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں جو ہے انرجی سپیس کے اندر ہم آئیڈیل پارٹنرز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مودی جی نے آج جو ہے $100 million کا ایک جو سولر پاور پروجیکٹ تھا اس کو بھی انوگریشن اس کا کیا ہے. یہ بہت دنوں سے خبریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ سعودی عربیہ نے اپنا ویزاز جو ہیں وہ روک دیے ہیں، تو سعودی عربیہ نے یس ٹیمپرریلی سسپینڈ کیے ہیں ویزاز ٹو سٹیزنز آف 14 countries جس کے اندر ہے انڈیا، ایجپٹ، انڈونیزیا، عراق، نائجیریا، جارڈن، پاکستان، بنگلہ دیش، سوڈان، ایتھیوپیا، ٹونیزیا، یمن، موراکو اینڈ الجیریا. تو یہ بہت سارے جو 14 countries ہیں اس کے لیے وہ حج کے انہوں نے جو ہے ان کے لیے انہوں نے ابھی ویزا سسپینڈ کیا. جن کے پاس تو عمرہ کا ویزا آلریڈی ہے اور انہوں نے سارے پروٹوکولز فالو کیے ہیں وہ تو ابھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ اب انلیگل طریقے سے رہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور انلیگل طریقے سے رہ جاتے ہیں، اوور سٹے کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اب جو ہے یہ بین لگایا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا ہے، ہم ارینجمنٹس نہیں کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جو یہ پراپر رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے تو اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے، ہیٹ بہت بڑھ جاتی ہے، آلریڈی بھی گرمی ہے. اس دفعہ تو حج ویسے بھی جون کے مہینے میں آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں پھر لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں. 2024 میں بھی کوئی 1,000 کے قریب لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھی اسی لیے کیونکہ، بلکہ 1200 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی لیے کیونکہ یہ انلیگلی جو تھے یہ بائی پاس کر کے سسٹم کو آ جاتے ہیں और उनका चूंकि डेटा नहीं होता है, जैसे कि उन्होंने अब फॉर एग्जांपल 8 लाख लोगों का इंतजाम किया हुआ है हज के लिए और अगर 10 लाख आ गए हैं तो फिर इसलिए उनको प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम ये हमने स्टेप लिया है। आज बहुत अरसे के बाद कुछ प्यार की नजर जो है अमेरिका की पाकिस्तान पे आई है और बात वही है जो हमारी मिलिट्री ने किया है, जरा ये टेररिज्म टेररिज्म का शोर थोड़ा मचा के भाइयों अरे दीवानों मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, तो वो जब उन्होंने हमारी मिलिट्री ने ऐसा किया है तो अभी थोड़ा प्यार का नजर आ गया। तो आज इसहाक डार साहब जो है उनकी फॉर द फर्स्ट टाइम जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो उनके साथ बात हुआ है। फॉरेन ऑफिस के मुताबिक डार साहब ने बहुत सारे बायलैटरल जो है रिलेशंस और सिक्योरिटी और इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथनिंग है और ट्रेड उसके ऊपर आज उन्होंने बात किया। इसके अलावा उन्होंने जो ये टेररिज्म हो रहा है अफगानिस्तान से उसके ऊपर भी बात किया। इसके साथ साथ डार साहब ने इनको बताया कि ये जब आप यहां से जा रहे थे तो अपना सारा आप वेपन्स छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, जिसको कि टीटीपी और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो हमारे ऊपर अब यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है इनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा जी कि आपका ये जो यूएस इक्विपमेंट है ये उठाने की जरूरत है, तो मार्को रूबियो ने इनके साथ अग्री किया और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं आपके काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में और पाकिस्तान का थोड़ा तारीफ भी किया। पीटीआई जो है उसके ऊपर बहुत दिनों से ये इतराज आ रहा था। आपको पता ही है कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपको ये खबर सुनाई थी कि जो विल्सन जो है वो एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेकर आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नमेंट को 180 डेज दिया है कि भैया आप दुरुस्त हो जाओ, अपना दिमाग ठीक कर लो वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट आया था उसके अंदर ये भी था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ को नहीं चला रहे हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मान रहे, तो इसके लिए बहुत सारा बैकलैश पीटीआई को आ रहा था। तो आज पीटीआई के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने आज रिपोर्टर्स के साथ पार्लियामेंट हाउस में वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक बिल्कुल नहीं है, विच इज राइट ऑफकोर्स, ये तो उनके कांग्रेसमैन जो हैं वो लेकर आ रहे हैं और ये बहुत अरसे से इलहान उमर और जो ब्रैड शर्मन और रो खन्ना और राशिदा तालिब जो थे इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर ही रहे थे। तो अब ये जो 2 US लॉ मेकर्स ने लास्ट मंथ ये लेकर आए थे पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि बहुत सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है और खासतौर पे जो प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है इमरान खान और उसका पार्टी का वो ठीक नहीं है, तो इन्होंने कहा था कि अमेरिका को इन्वोक करना चाहिए यूएस ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट और बिल्कुल ये जो लोग इस तरह के वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके वीजेस यूएस को बिल्कुल बंद कर देने चाहिए है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस जो है ऐसे अभी आए हुए हैं, तो वही बात कर रहे थे गौहर अली खान जो है वो कह रहे थे कि ऐसे तो लेजिस्लेशंस और रेजोल्यूशंस जो है वो आते रहते हैं यूएस कांग्रेस के अंदर और पीटीआई जो है वो बिल्कुल इस तरह के किसी बिल के साथ कनेक्टेड नहीं है। हम तो अभी जो यूएस डेलीगेशन पाकिस्तान में भी आया था उसके साथ भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो मिले भी नहीं है उनके साथ। तो अब रिपोर्टर्स ने कहा कि फिर आपका अब क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा जी एक ग्रैंड अलायंस बनाने का हम फिर से कोशिश कर रहे हैं और जेयूआई के चीफ जो है मौलाना फजलुर रहमान वो अप्रैल 15 तक हमको बताएंगे कि हम हमारे साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे और फिर उसके बाद हम जो है एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चलाएंगे। तो ये बातें आज उन्होंने की। लाहौर पुलिस जो है जी उन्होंने आज अनाउंस किया है कि वो बुक करेंगे सलमान अहमद को पाकिस्तानी म्यूजिशियन अंडर पीका एक्ट, ये जो है प्रिवेंशन ऑफ जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, और उन्होंने कहा जी कि ये इनका केस जो हमने फाइल किया है डिफेंस ए पुलिस स्टेशन में लाहौर में ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एफआईआर जो है उसमें उन्होंने कहा जी कि सलमान अहमद साहब फॉल्स प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बढ़ाते हैं और हेट स्पीच जो है वो करते हैं सोशल मीडिया पे जो बहुत ही वायरल हो जाता है, और एक जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाला था उसने ये देखा था और फिर ये उसने केस रजिस्टर किया था। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर कोई भी इस तरह का जो है वो अंडर पीका लॉ यानी कि कोई ऐसा फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहा है अनरेस्ट और पैनिक ला रहा है सोसाइटी में तो उसको अभी वो कहते हैं कि 3 साल का जेल और 2 मिलियन रुपीज जो है वो फाइन आएगा या कोई कोई को तो बोथ आएगा। और पीटीआई ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि हमने دسمبر لاسٹ ایئر میں ڈاکٹر سلمان جو ہے اس کا جو ممبرشپ ہے اس کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا. لیکن آپ کو یاد ہوئے گا کہ ہمارا پہلا بھی ایک انٹرویو ڈاکٹر سلمان کے ساتھ ہم نے کیا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ میں تو ان کی پارٹی کا ممبر ہی نہیں ہوں تو میرا وہ ٹرمینیٹ کیسے کر سکتے ہیں. یہ تو اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں, کیونکہ یہ جو تھے ایڈوائزر تھے عمران خان صاحب کے آن کلچرل افیئرز, تو یہ اب ایز اے ریزلٹ اسی کیپیسٹی میں اب تک خیر ان کا وہ نہیں رہا ڈیزگنیشن, لیکن ایسوسیشن ود عمران خان جو ہے اس کی وجہ سے یہ امریکہ میں ان کے لیے بات کرتے ہیں, تو ان کا پارٹی کے ساتھ ادروائز کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی حیرت کا اس وقت بھی اظہار کیا تھا جب ہم کو انٹرویو دیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جی وہ اب بہت زیادہ ایمبیشس طریقے سے اور بہت واقعی سنسیئر نظر آ رہی ہے کہ ایک کرپٹو لینڈسکیپ جو ہے وہ کریٹ پاکستان میں کرنا چاہ رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے جو چائنیز جو ہیں بینانس کے فاؤنڈر چینگ پینگ زاؤ ان کو اسٹریٹجک ایڈوائزر لگایا ہے ان دا نیولی فارم پاکستان کرپٹو کاؤنسل, جس کے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا سی او بڑے جو زبردست قسم کے وہ جو لڑکے ہیں وہ بلال بن ثاقب ان کو لے کر آئے ہیں ٹو موو دیز تھنگز فارورڈ. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈر, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, فیڈرل سیکرٹریز آف لا اینڈ آئی ٹی سب جو ہیں اس کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس کو دیکھیں گے, جنہوں نے کہ آج میٹنگ بھی اٹینڈ کی. اس کے علاوہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بھی دیکھیں گے اور زاؤ کی ملاقاتیں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں. زاؤ جو ہے بہت ہی انفلوئنشل فگر ہیں ویب تھری کے لیے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہم کو گائیڈنس دیں گے فار انفراسٹرکچر اینڈ ریگولیشن کہ ہم کو کرپٹو کا کیسا بنانا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ہر کنٹری کے اندر ابھی کرپٹو نے اتنا زور نہیں پکڑا ہے, ٹریڈیشنل بینکس جو ہیں اس کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ اب جی نیکسٹ لیول کی چیزیں اور یہ کر رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر محسن نقوی جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر جو ہے این آئی ایف ٹی اے سی وہ ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹیرر انسیڈنٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ ایک ففتھ میٹنگ کر رہے تھے جو نیکٹا بورڈ آف گورنرز ان اسلام آباد ہے, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو ٹیروریزم کے خلاف ایک پلیٹ فریم ورک بنانا پڑے گا. اور اس پہ بات کرتے ہوئے منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر طلال چودھری نے کہا کہ یہ جو این آئی ایف ٹی اے سی جو ہے نفٹیک یہ انہانس کرے گا نیکٹا کو, ان کے آپریشنل کیپبلٹی اس کی بڑھائے گا ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیروریزم. امبیسڈر محمد صادق خان جو ہیں انہوں نے آج پاکستان کے جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اسپیشل انوائے ہیں یہ افغانستان میں, انہوں نے بڑا وارن کیا ہے کہ دا ڈیل از آف دا ٹیبل ود افغانستان, اگر افغانستان کے رولرز نے اسلام آباد کی بات کے اوپر دھیان نہ دیا اور ان کی سوائل سے جو ٹیررزم پاکستان میں آ رہا ہے اس کو نہیں روکا. تو کابل ویسے یہ ساری چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے, لیکن پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے بالکل افغان سوائل سے جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. انہوں نے ایک سیمینار میں اسلام آباد پالیسی فار ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ ٹی ٹی پی بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور اس کو یہ بالکل روک نہیں رہے ہیں. ہمارے ینگ لڑکے لڑکیاں جو بچے ہیں ہمارے مر رہے ہیں, تو ہم ان کو مرتا ہوا اب نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہ ڈیلی بیسس پہ یہ جو چل رہا ہے اس کرائم کو اگنور نہیں کر سکتے اور افغانستان کو ہمارے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اوپر ہم پروگرس کر سکیں. دو ویکس بیک جو تھی ان کی بات چیت جو تھی افغان طالبان کے سینئر منسٹرز اور آفیشلز کے ساتھ ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس میں بہت ساری باتوں کے اوپر بات کیا ہے جس میں کہ انکلوڈڈ تھا ٹی ٹی پی کا ایشو بھی. تو اب اس کا آؤٹ کم کیا ہوا ہے کچھ پتا نہیں چلا ہے, دیکھیں گے ابھی, کیونکہ جو افغانستان کے رولرز ہیں وہ تو بولتے ہیں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ. ہندوستان کے اندر وہی جو وقف ایکٹ آ گیا ہے جی اس کے اوپر کافی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ابھی بھی چل رہا ہے. آج نیشنل کانفرنس جو ہے اس نے ڈس الاؤ کیا ڈبیٹ کو آن وقف ایکٹ ان جموں اینڈ کشمیر اسمبلی میں, کیونکہ جو چیف منسٹر عمر عبداللہ جو تھے وہ مل کر آئے تھے یونین منسٹر کرن رجوجو کو, اور جو اپوزیشن تھی وہ بہت زیادہ بھڑکی ہوئی تھی کہ جو لوگ اس بل کو لے کے آئے ہیں آپ ان سے ملنے کے لیے کیوں گئے ہیں, کیونکہ یہ اتنا کنٹروورشل لا ہے. تو اس کی وجہ سے اپوزیشن کافی بھڑکی. حریت چیئرمین جو ہیں میر وائز عمر فاروق انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل ایک ریڈیکولس اور کنڈیمیبل آئیڈیا ہے, اور اسی طرح پی ڈی پی جو ہے اس نے بھی کہا جی کہ آخر کار یہ والی جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ نیشنل کانفرنس کی جو گورنمنٹ ہے बीजेपी का जो एंटी मुस्लिम एजेंडा है उसके साथ वो चल रही है। तो लेकिन मुझे तो याद आ रहा है कि महमूदा मुफ्ती जी आपका भी बड़ा अलायंस था, पीडीपी का भी बड़ा अलायंस था बीजेपी के साथ कभी कुछ टाइम बैक, तो अभी आपका नहीं है तो अभी आपको ये सारी बातें याद आ गई, उस वक्त आपको नहीं आ रहा था कि ये एंटी मुस्लिम इनका एजेंडा है। बहरहाल जी, जम्मू और कश्मीर जो असेंबली है उसके अंदर आज काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑपोजिशन ने बड़े नारे वारे लगाए और उन्होंने कहा जी कि तुम कैसे मीटिंग करके आए हो रिजिजू के साथ, और जो है फिर उसके बाद स्पीकर के सामने ये अपोजिशन ने जब कहा कि हम बात करना चाहते हैं तो इनको रोक दिया गया, जिसके के ऊपर और जो है अपोजिशन का शोर मचा कि यही एक तरीका होता है कि हम इस लॉ को डिसअप्रूव कर सकते थे कलेक्टिवली, लेकिन आप हमको तो हमारा आइडिया ही एक्सप्रेस करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि जो ये एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इंडिया में है, अगर हम भी इस वक्फ एक्ट को कंडेम नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि ये जो मुसलमानों को बहुत बड़ा स्नब मिला है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपने जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के जो हैं वो तो यूनियन मिनिस्टर के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनको यानी कि उनकी शाबाशी दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है। इसके ऊपर बीजेपी के सुनील शर्मा जो थे उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये आप लोग जो है बिला वजह का रिलीजियस सेंटीमेंट्स इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वीकेंड के ऊपर जो थे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब वो कर रहे थे विजिट, उसके ऊपर हुर्रियत चेयरमैन के मीरवाइज उमर फारूक साहब जो है उनको अरेस्ट किया गया और उनको घर में हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है, और इसके अलावा हंड्रेड ऑफ कश्मीरीज जो थे उनको घरों से निकाला और उनको बुलाया गया और उनको कहा जी कि तुम बाओ करोगे जिस वक्त ये आएंगे यहां पे और तुम लोग उनको वेलकम करोगे यहां पे, और मीरवाइज साहब जो थे मीनवाइल उनको रोक दिया गया, वो एक सेरेमनी अटेंड करने वाले थे श्रीनगर बेस्ड तिबियान कुरानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका, तो उसके ऊपर काफी लोग जो थे वो वहां पे भड़के तो हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे आपने बहुत डीपली हमारे सेंटिमेंट्स को तो हर्ट किया है जो कि बड़ा रिग्रेटेबल है, लेकिन फिर भी जो है कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है। उमर फारूक जो है मीरवाइज उमर फारूक उन्होंने भी कहा जी कि जो है ये बिल्कुल गलत तरीके से चीजों को जो है यहां पे रोका जा रहा है, एक तरफ तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट एजेंडा है और दूसरी तरफ लोगों को के सेंटीमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ जो मीडिया के अंदर खबरें आए हैं कि वो ये है कि लोगों ने जब ये इनके जो पुलिस वहां पे थी उसके ऊपर पत्थर मारे और उनको कहा कि भाई ये आपने जो लिस्टें भी बनाए हैं ये भी गलत है, क्योंकि जो पुलिस ने लिस्टें बनाए थे जिसके के अंदर वो कह रहे थे कि ये ज्यादातर कश्मीरी जो है ये स्टोन पेल्टर्स है और ये जो है सरेंडर्ड मिलिटेंट्स है या कि वैसे ही मिलिटेंट्स है और इस तरह के बहुत सारे, तो उसके ऊपर भी लोगों का बड़ा गुस्सा था। एसएसपी जो है शोपियां के इनायत अली उन्होंने कहा जी कि यह एक्शन इसलिए लिया गया है कि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आने वाले हैं जैसे कि रिपब्लिक डे है और इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके होते हुए हम ये जो है लेते ही है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये तो हम सारी चीजें इसी तरह ये सारी मतलब ये सुरक्षा से रिलेटेड है यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो हम ये करते ही है। अब जनाब जो इधर आ रहा था बहुत दिनों से जो एंटरटेनमेंट में कि जी अब जो आने वाली है रेस 4 उसके अंदर कौन कौन रहेंगे, तो बेशुमार लड़के लड़कियों के नाम आ रहे थे कि ये आएंगे ये आएंगे ये आएंगे, तो अभी प्रोड्यूस रमेश तुरानी जो हैं वो आज फिर फाइनली सामने आए और उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा, उन्होंने कहा जी कि अभी खाली हमारा इंस्ट्रक्शन जो डिस्कशंस है वो सैफ अली खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ चल रहा है और किसी के साथ नहीं चल रहा है, और कोई भी लड़का और कोई भी लड़की जो है हमने अभी फाइनलाइज नहीं किया है, और अभी तो ये जो है रेस 4 ये स्क्रिप्टिंग के स्टेज पे है, तो इसमें हम जो है वो कास्ट को कैसे फाइनलाइज कर सकता है। फिर उन्होंने मीडिया को कहा कि ये जो बहुत झूठा खबर आ जाता है मीडिया के अंदर प्लीज आप इसको मत फैलाओ और थोड़ा वेट किया करो हमारे प्रेस रिलीज के लिए, तो हमारी जो पीआर टीम है आपको सारा डिटेल्स इसके बारे में देगी। इमरान हाशमी जो है वो बहुत दिनों के बाद नजर आएंगे जी, एक उनका मूवी आने वाला है ग्राउंड जीरो और बहुत ही थ्रिलिंग ये जो है वो होने वाली है मूवी, उसके अंदर ये एक मिलिट्री वाले के जो है वो उसमें है गेटअप में है और ये ट्रू स्टोरी के ऊपर है कि कैसे जो कश्मीर के अंदर टेररिज्म था उसको इन्होंने फाइट किया, और उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही जबरदस्त इसमें पावरफुल डायलॉग्स है, सीक्वेंसेस बड़े अच्छे हैं और बड़ी ही पेट्रियाटिक मूवी। असल में क्या है ना कि वो इंडिया के अंदर उन्होंने अब ये मसाला ढूंढ लिया है कि जी सारी मूवीज एंटी पाकिस्तान बनाओ तो वो हिट रहेंगे, तो अगर वो एंटी पाकिस्तान मसाला मूवी नहीं है तो फिर वो आपके पैसे बर्बाद होएंगे। तो इसलिए दुश्मन को बैच करो ताकि लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा हाई हो जाए, लोग खुश हो जाए कि जी पाकिस्तान का क्या बैशिंग किया, ओ घुसे और हमने मारा और ये किया वो किया। लेकिन उनको कभी कभी भूल जाता है कि बालाकोट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके 2 तैयारे गिराए हैं और उसका मलबा अभी तक बालाकोट से हटाया ही नहीं है, लोगों ने हटाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ये दोनों तैयारे का ये जो मलबा है यहीं पे पड़ा रहने दो। तो एक तो तैयारे की बात हिंदुस्तान करता नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो कुछ मशकूक किस्म के पायलट्स थे, दूसरा तो आपका पायलट भी पकड़ लिया था पाकिस्तान ने, तो इसलिए इनको ये जरा भूल जाता है। तो इसलिए अब ये बेतहाशा ऐसे फिल्में बना रहे हैं, औरंगजेब को बना रहे हैं, उसको विलन दिखा रहे हैं और वो जी बहुत सारे टेम्पल्स तोड़ रहा था और वो ये कर रहा था और जुल्म कर रहा था। तो यानी कि जितने भी मुगल राजे थे इंक्लूडिंग अकबर, उसमें सबसे ज्यादा जो हिंदू जो एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स थे वो तो औरंगजेब के जमाने में थे, तो कैसे वो एंटी हिंदू हो सकता है। हिंदू टेम्पल्स के लिए हजारों रुपए उसने उस जमाने में दिए थे कि उसको बिल्ड करें। खैर एनीवेज, तो जनाब ये बीएसएफ के जी बड़े उसके अंदर नजर आएंगे और ये 50 ईयर्स जो है इसको जो 2015 में ये जो हुआ था तो वो उसमें उन्होंने कहा जी कि बेस्ट 50 ईयर्स का ऑपरेशन जो है इस मूवी के अंदर नजर आएगा। और हाशमी साहब जो हैं वो बीएसएफ के कमांडर नरेंद्र नाथ ढर डूबे वो उसका रोल ये प्ले करेंगे और वो उस फिल्म के अंदर ये भी दिखाया जाएगा कि सिविलियन सोल्जर्स अपना लाइफ कैसे गुजारते हैं और फिर वो जो है वैली के अंदर पीस जो है वो कैसे लेके आए हैं। सलमान खान की जो सिकंदर है उसने कुछ इतना अच्छा नहीं किया है, बड़ा ही ल्यूक वार्म सा इसका रिस्पॉन्स जो था वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर था। तो इसलिए अब सलमान खान जो है आजकल एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया जिसमें कि वो अपने फैंस के साथ मिल रहे हैं और वो कहते हैं जी कि मैं अपने फैंस से डायरेक्टली सुनना चाहता हूं कि वो मुझे क्या बोलना चाहते हैं ताकि मैं फिर नेक्स्ट टाइम वैसा गलती नहीं करूं, और मैं तो सारे वो वाले प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूं जिसमें मेरे फैंस खुश रहेंगे। तो इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं करूं और क्या नहीं करूं। इसके अलावा इनकी जो और कुछ अभी खबरें आ रहे हैं कि ये रीयूनाइट कर सकते हैं संजय दत्त के साथ, गंगा राम एक मूवी आ रही है ना, और फिर उसका ये जो है ये सीक्वल रहेगा किक, जो इनकी मूवी आई थी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी वो और फिर उसके बाद एटली जिन्होंने के पहले शाहरुख खान के साथ काम किया है तो अभी वो शायद इनके साथ भी किसी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। हैरी ब्रुक 26 ईयर्स जनाब उनका एज है, उनको नेम किया गया है आज इंग्लैंड का न्यू व्हाइट बॉल कैप्टन। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कहा है कि ये अब हमारा सिर्फ ओडीआई ही नहीं बल्कि टी20 टीम्स को भी लीड करेगा। ये यॉर्कशायर का बैट्समैन है और बहुत ही फेवरेट है और इसने जो है जो ये सारा रोल लिया है वो जो बटलर से लिया है जिन्होंने के जो फरवरी में अनाउंस किया था कि अब वो रिटायर कर रहे हैं क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें काफी इंग्लैंड का बुरा परफॉर्मेंस था और सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाए थे। तो दोनों ही इसके अलावा इंग्लैंड जो है टी20 और ओडीआई वर्ल्ड कप टाइटल्स भी उनके अंडर खो दिया था उसने। तो ब्रुक जो थे वो ऑलरेडी बटलर के डेप्यूटी थे और ही प्लेड एज स्किपर ड्यूरिंग ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सेप्टेम्बर, तो ये नेचुरल चॉइस ही थे तो इसलिए इनको जो है उन्होंने किया। इनॉग्यूरल एडिशन ऑफ वर्ल्ड अंडर 23 स्कॉश चैंपियनशिप जो है वो अभी कराची में शुरू हो गई है और उसमें पाकिस्तान के नूर जमान और मोहम्मद हमजा खान ने जो है ओपनिंग मैचेस विन किए हैं। नूर जो है उन्होंने डिफीट किया है कुवैत के हुसैन अल जारती को, और ये आप गलत तस्वीर दिखा रहे हैं जी, आप प्लीज ये वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप का पिक्चर दिखाएं प्लीज, ये आप क्रिकेट का पिक्चर दिखा रहे हैं पिशावर जलमी का। तो उन्होंने जी जो कराची में मैचेस शुरू हुए हैं स्क्वाश के वो आप दिखाइए प्लीज। तो ये इन्होंने हमजा खान जो है इन्होंने डिफीट किया है रोमानिया के रदु स्टीफन को, और जो है मोहम्मद अमाद जो है उन्होंने लेकिन वो बेचारे हार गए मलेशिया के अमीश राज चंद्रम से। और यस दिस इज द राइट पिक्चर, ये है वर्ल्ड अंडर 23 स्कॉच चैंपियनशिप का। तो ये इन दो लड़कों ने जो नूर जमान और मोहम्मद हमजा थे इन्होंने बहुत अच्छा انہوں نے کھیلا. ویمنز ایونٹ جو تھا پاکستان کی جو مریم ملک اور ثنا بہادر اور آمنہ فیاض جو تھے یہ سارے کے ساری تینوں لڑکیاں تو فرسٹ راؤنڈ میں ہی آؤٹ ہو گئی تھی. لڑکوں نے پھر اچھا کیا اور مریم نے لوز کیا اسپین کی ناو رومیرو کے اگینسٹ. آمنہ جو ہے وہ ہاری جاپان کی کرومی تکا کاشی سے اور ثنا جو ہے چیکو سلوویکیا ریپبلک کی جو تمارا ہالز بیوروا جو ہے اس سے ہار گئی. تو اب یہ راؤنڈ آف 16 جو ہے آج سے اپریل 7 سے شروع ہو گیا ہے اور لڑکے جو ہیں وہ راؤنڈ آف 16 میں ہیں. اب کمبائنڈ بولنگ ایفرٹ جو کیا تھا فالوڈ بائی ہاف سینچریز بائی منیبا علی اینڈ نتاشا پرویز اس کی وجہ سے پاکستان جیتا وتھ 6 وکٹس فرام ویسٹ انڈیز ان دا سیکنڈ وارم اپ آف ویمنس کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر. اور یہ چیز کر رہی تھی پاکستان کی ٹیم 189 رن ٹارگٹ کو اور پاکستان جو ہے اس نے پھر یہ ون کیا. سوری 6 وکٹ سے نہیں پاکستان جیتا 5 وکٹ سے جیتا ہے. 23 بالز جو تھے ابھی دے اسٹل ور دیئر ٹو اسپیئر تو پاکستان نے جیتا. یہ ایونٹ جو ہے اب پورا فل فلیج تو شروع ہوئے گا اپریل 9 سے 19 کے بیچ میں رہے گا. منیبا جو ہے انہوں نے 87 بنائے آف 113 بالز. نٹالیا نے بنائے 53 آف 60 بالز. اینڈ جو گل افروز ہے انہوں نے ان کے ساتھ ایڈ کیا 28 رنز. تو بیٹنگ فرسٹ ویسٹ انڈیز میڈ 188 فار 8 ان 50 اوورز. سعدیہ اقبال جو تھی اس کے بیسٹ بولنگ فگرز تھے 21 رنز کے لیے اس نے 3 وکٹس لیے. اس سے پہلے پاکستان نے تھائی لینڈ کو بھی ہرایا تھا 7 وکٹ سے ود 187 بالز ٹو اسپیئر. اینڈ ایبسولیوٹلی جناب آور لاسٹ نیوز از اباؤٹ پشاور زلمی. ان کو اب کافی بوسٹ ملے گا کیونکہ ان کے پاس سائم ایوب جو ہے وہ آگے ہے اور وہ بالکل جو ہے فٹ ہے پی ایس ایل 10 کے لیے جو کہ اب شروع ہونے والا ہے اپریل 11 سے. اور ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا, اینکل انجری آ گیا تھا ان کا اور پھر ان کو ریہیبلیٹیشن ان کا چل رہا تھا لندن کے اندر. تو اب یہ واپس آ گئے تھے عید کے اوپر ٹو بی ود ہز فیملی اور ابھی یہ پوری طرح سے ریکور کر گئے ہیں اور جم کے اندر ابھی ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے. ان کو انجری آیا تھا جب یہ ٹیسٹ سیریز کھیل رہے تھے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ ان ارلی 2024 اور پھر یہ جو ہے اسی لیے یہ ٹور نہیں کر سکے تھے پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی میں اور نیوزی لینڈ ٹور کے اوپر بھی. تو پشاور زلمی کے لیے جناب یہ اچھا خبر ہے کہ یہ آگے ہے واپس. ہاں بھائی
تو یہ
تھی ہماری مس کیا
بھائی, پورا لندن گھومتے رہیں ادھر ادھر گھومتے رہیں جناب پارٹی کرتے رہیں.
اچھا لیکن لندن ٹمکتے لندن ٹمکتے رہے
لندن ٹمکتے رہے.
ارے رے رے یہ کیا کیا سائمن
ٹانگ جو انہوں نے توڑوا لی تھی اپنی اور
ویلچیئر میں پھر رہے تھے
نہیں مطلب وہ اسٹک کے ساتھ.
اچھا اچھا
تو یہ حالات جو ہیں وہ سائن صاحب کے تھے اور اگر یہ آ گئے تم اچھا ایسٹ ہے اچھا بیٹسمین ہے مجھے ایسا لگتا ہے اور ینگ ہے اور اس کی کرکٹ بہت ہے ابھی. تو اگر یہ واپس آ گئے تو لیکن جو ٹیم آئی ہے ابھی تو ٹکڑوں میں آ رہی ہے اس کا آج آپ نے چھیڑا نہیں
ٹکڑے ٹکڑے گینگ
وہ ہمیشہ کی طرح آدھے لاہور اتریں گے آدھے کراچی اتریں گے تو اسلام آباد اتریں گے تاکہ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھتی نہ ہو
چھپ چھپ کے چھپ چھپ کے چھپ چھپ کے. تو اس طرح سے ہر ہی
ہو گیا لیکن گانے پہ بھی بڑا شور مچ گیا پی ایس ایل کے
بعد.
لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہا تھا کہتے ہیں یار وہ کوئی شادی بیاہ کا گانا لگتا ہے.
نہیں تو اب کیا کریں رونے کا گانا بنائے. میں نے تو دیکھا مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے
گانا صحیح ہے لیکن
اصل میں ٹائم لگے گا نئے وہ چیز نہیں. آئی مین انکلوڈنگ مائی سیلف جیسے کہ وہ پہلی دفعہ جب آیا تھا وہ ینگ سٹنرز تھے اس کے اندر تو وہ گانا گا رہے تھے نا
سمجھ نہیں آ رہا تھا
وہ سمجھ نہیں آتا. جیسے میں نے ذیشان کے پاس میں گئی میں نے کہا ذیشان کتنا یہ بکواس ہے اس کا گانا. تو ذیشان چونکہ تم لوگ ینگسٹر ہو تو ذیشان نے کہا نہیں مجھے تو بڑا پیپی لگ رہا ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو پھر وہ ہولے ہولے جب میں نے سنا بہت دن
بیٹ پکڑنے میں ٹائم لگتا ہے
تو پھر وہ ایسے ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ذرا تھوڑا زیادہ ہی وہ ہے
کچھ دن لگیں گے لیکن ظاہر ہے پی ایس ایل جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور چلیں جناب بیسٹ آف لک فار آل پی ایس ایل ٹیمز. ایک تو برانڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار کچھ کام کر رہا ہے لیکن پلیئر جنریٹ نہیں ہو پا رہے ہیں سم ہاؤ.
اسکواش میں ہم پاکستان اچھا کر رہا ہے
اسکواش میں بھی اچھا نہیں کرے گا تو سبھی چیزوں میں لیکن بس تھوڑا سا
آج پی آر کی پینگیں بڑھ گئی ہیں نا مارکو روبیو سے تو ابھی پیسے آنے شروع ہو جائیں گے.
پیسے کھا جاتے ہیں
چلو تھوڑے تھوڑے سے لگا ابھی تو پایا نا ہماری طرف سے میسج ہے کھاؤ لگاؤ بھی لیکن
نہیں ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے ایسے کچھ جملہ کس کسی کے بارے میں
گورنمنٹ کے بارے میں
گورنمنٹ کے بارے
میں وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں ایٹ لیسٹ جیسے کہ موٹر ویز بنائے
ٹیلی
ٹیکسیاں بنائی بریجز بنائے وہ
انفراسٹرکچر
انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا انفراسٹرکچر کا بھی اور اس زمانے میں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب تو ہم کو آئی ایم ایف کے پیسے بھی لینے کی ضرورت ہے تو پھر زرداری صاحب آئے نا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آئی ایم ایف کا
پیسے کسی کو برے نہیں لگتے
ہاں آتے برے نہیں لگتے اصل میں بات یہ ہے تو انہوں نے کہا تھا اب نہیں چاہیے ہم کو اور اس وقت زمانے میں اگر آپ کو یاد ہوئے کہ لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو گئی تھی بالکل ختم ہونے کر دی تھی ہاں بالکل لوڈ شیڈنگ ہاں بالکل
مطلب اگر ہوتی ہے تو وہ شیڈیولڈ ہوتی تھی
شیڈیولڈ ہوتی تھی اور
ہمیں پتا ہوتا تھا ہمیں کہ یار بھائی اتنے بجے جانی جانی ہوتی
ہے کہ چھ چھ سات سات ایک آدھ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ایسے کر کے
یہ بالکل تھا
جاری تھی وہ بالکل وہ ختم ہو گئی تو انفراسٹرکچر پہ کافی انہوں نے کام کیا تھا فورن انویسٹمنٹ جیسے کہ وہ گریز وغیرہ آ گئے تھے عمار آ گیا تھا اور اس طرح کے کافی لوگ وہ گیگا مال جو انہوں نے بنایا گریز نے تو اس طرح کافی انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن پھر اس کا تیا پہنچا کر دیا
بیسیکلی وہ اس لیے ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا 2007 سے لے کر آگے میرے خیال سے جب دبئی کی جب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ڈاؤن ہوئی تھی نا تو یہ سارے موو ہو کر جو ہے وہ پاکستان آ گئے تھے اور یہاں پر سارے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی تھی اور دبئی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے لوگ وہاں اپنی پراپرٹیاں اور اپنی گاڑیاں سڑکوں پر جو انشورنس ان کی گاڑیاں تھیں وہ سب اپنی چابیاں وہیں چھوڑ کر جو ہیں لوگ اپنے
2008 میں بہت برا حال تھا بالکل یہی حال تھا لوگوں کے گھر کے اے سی چل رہے تھے اور گاڑیاں انہوں نے اپنا کچھ ضروری سامان پکڑا کیونکہ نوکری نہیں رہی تھی تو اس لیے انہوں نے اپنا ضروری سامان پکڑا اور اپنا سارا جو گاڑیاں وڑیاں ایئرپورٹ یہ تو میں نے خود کور کی ہے اسٹوری ایئرپورٹ بھرا ہوا تھا اور اس سے جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ لوگ بھاگ گئے تھے
تو چلے گئے تھے اور اس سے فائدہ جو ہے وہ پھر پاکستان کو لیکن پاکستان کا ریئل اسٹیٹ جو ہے ہمیشہ سے ہی وہ بوم ہی رہا ہے کبھی بھی پراپرٹی میں نے نہیں دیکھا کہ کم ہو گئی ہو کچھ پرابلمز آ گئی ہوں اور عمران خان کے ٹائم پہ بہت اچھا ہوا تھا عمران خان نے جو سسٹم یہ مارگیج والا سسٹم لے کر آیا تھا یہ بہت زبردست تھا ایک مڈل کلاس جو بندے آدمی ہیں وہ کم از کم مارگیج کرا کے گھر بنا لے کم از کم 15-20 سال کی اس کی مارگیج ہو گئی تو وہ کر لیں تو یہ سب سلسلہ جو ہے کچھ ہر گورنمنٹ کا اپنا اپنا اچھا تھا
لیکن یہ تھا کہ نواز شریف کا کافی کافی اس نے کام کیا تھا کافی کام تھا
اور بزنس مائنڈ
بزنس مین تھا اور وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی
انڈیا کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ تو ویسے ان کی بہت رشتے داری بھی ہو گئی اب تو خیر لیکن انڈیا کے ساتھ یس
انڈیا کے ساتھ مودی جی بھی آئے تھے اور انڈیا کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئی تھی اصل میں تو بات ہی ہے کہ اگر پاکستان اور یہ انڈیا جو ہے نا یہ اپنا مارا ماری اور یہ دماغ خراب کرنا چھوڑ دیں ان کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں رہے گی اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں یہ دونوں ہی اتنے بڑے ملک ہیں اور دونوں میں جو کنزیومر مارکیٹ ہے اتنا بڑا ہے اتنی تو ان کو ضرورت نہیں ہے زیادہ کتنی ادھر ادھر دیکھنے کی
یہ یورپ تو سب فیل ہو جائے گا
پورے کا پورا یورپ جو ہے وہ تو آپ کی ایک اس میں آ جائے گا مہاراشٹرا اسٹیٹ میں آ جائے گا
اسٹیٹ میں آپ انڈیا میں
5-5 ملین کی تو آبادیاں ہیں ان کی تو وہ کتنی آبادی ہیں تو وہ جو ہے کیسے تو
لیکن سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ کیسے
کیسے جو ہے وہ زیادہ ہی ریجیکٹ ہو گیا جو ہے
لیکن مجھے لگتا ہے مودی کے آنے کے بعد سے کافی
چیزیں خراب ہوئی ہیں کافی خراب ہوئی ہیں کیونکہ وہ
کانگریس ٹائم میں پھر بھی بہت بہتر
نہیں نہیں وہ بیک ڈور چینل جو تھا وہ کھلا رہتا تھا کانگریس کے ساتھ بات یہاں
بالکل
انہوں نے کر دیا جو ٹیررزم ختم او بھائی بھائی جان ہمارے اپنے بچوں کو مار کے جا رہے ہیں روز کوئٹہ کے اندر وہ سوئسائڈ بامبنگز کر رہے ہیں کے پی کے اندر کر رہے ہیں کرم کے اندر کیا کیا کچھ کر رہے ہیں کدھر کدھر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہو پاکستان جو ہے ٹیررزم وہ تو اپنے ملک کا بیچارہ نہیں ٹیررزم ختم کر سکتا
تو جو وکٹم ہے
ہم تو وکٹم تو تمہیں جو جا کے مار رہے ہیں لوگ ان کو وہ کیسے روکیں گے بھائی جان تو یہ تو سینٹی یہ تو آپ کو اپنا دماغ تھوڑا سا ٹھیک کر کے سوچنا پڑے گا کہ یار بچے جن کے مار کے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کتنے جانور ہیں اب سٹیٹ یہ تو نہیں کر سکتی نا اور وہ بھی آرمی پبلک سکول کے بچے اور ملک تو ہمارا چلاتی ہی مل رہی ہے اس کے بچے مار دیے انہوں نے تو آپ سوچو ذرا کہ کس لیول کے یہ لوگ ہیں اور بلیم جو ہے سارا آپ عمران خان کو دے دیتے ہیں کہ جی وہ اس نے ٹی ٹی پی کو ادھر بسایا بھائی جان آپ شاید زرداری صاحب کا زمانہ ہمیشہ آپ لوگ بڑا کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں یہ وائلنس 2010 میں شروع ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہوئے تو اتنی وائلنس شروع ہو گئی تھی 2010 کے اندر اور یہ زرداری صاحب کے سارے جو تھے نا یہ زمانے تھے ڈرون کے اٹیکس پاکستان میں سب سے زیادہ اور ہمارے تو اپنے آفس میں سے جو تھا وہ وہاں پہ نیشن کا دفتر تھا اور بھی جو لوگ جاتے تھے ہمارے تو اپنے لڑکوں نے یہ کوشچن کیا تھا زرداری صاحب سے زرداری صاحب ڈرون کے اندر ہمارے لوگ مرے ہیں. تو زرداری صاحب نے بڑی بے نیازی سے بولا کہ ہاں جی جب ڈرون کا حملہ ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہی ہے, تو مطلب ہے اگر پاکستانی مر رہے ہیں تو نو بگ ڈیل, اس لیے کہ تیرے اپنے بچوں کو تو کچھ نہیں ہو رہا تھا نا بھائی جان, دوسروں کے بچے مر رہے تھے تو اس لیے کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہی ہے. تو اصل میں ایسے
جب بارش آئے گا تو پانی آئے گا,
ہاں تو زیادہ بارش آئے گا تو زیادہ پانی آئے گا نا,
زیادہ میزائل گرے گا تو
زیادہ بندہ مرے گا. ہاں تو میرا بچہ تو نہیں مر رہا ہے نا, تو اس لیے مجھے فرق نہیں پڑ رہا ہے, دوسرے کا بچہ مر رہا ہے. تو یہ تھا, تو یہ وائلنس جناب 2010 سے شروع ہوئی تھی, تو ذرا وہ بھی تھوڑا سا آپ یاد کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے جناب,
چلیں جناب ہم آپ کے ساتھ تقریباً ایک گھنٹہ اور ہے, اور
نہیں مجھے نہیں رہنا,
آپ کا پی کیک لگ جائے گا, ٹیرف لگ گیا, بلکہ پی کیک بھی نہیں آپ پر ٹیرف لگ گیا, نہ جانے کا ٹیرف لگ گیا. اور ان کو بٹھاتے ہیں ابھی, آپ کے ابھی انہوں نے جتنی خبریں سنا دی ہیں نا, ابھی تو ان سے لیتے ہیں نا اندر کی بات نکالتے ہیں, اور پھر آپ کے ساتھ بھی کالز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اور 416-620-1778 ہمارا نمبر ہے, اور آپ ہمیں کالز کر لیجیے گا, ہم تھوڑا سا آپ کی کالز بھی لے لیں گے, لیکن شرط اور کنڈیشن وہی ہے کہ بھجن اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے